اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما بطل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم ہمارے بہت ہی معزز ٹیچرس اور شکشک حضرات اور اسٹوڈنٹس دینی بھائیوں اور ہماری تعلیم لینے والی بیٹیوں بچیوں بہنوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ایجوکیشن تعلیم اور شکشن لینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی یہ تعلیم اور شکشن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہم کو تعلیم لینے کی تاکید کرتا ہے کہ شکشن ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کرو اور خوب محنت سے حاصل کرو جہالت یعنی ابھڑ رہنا یہ ہمارے مذہب کے اندر پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آپ قرآن پڑھتے ہو اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پین کی قسم کھائی والقلم وما یسطرون قلم کہتے ہیں پین کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں قلم کی پین کی قسم کھا رہے ہیں اور ہم کو بتلا رہے ہیں کہ یہ قلم اور پین سے لکھنا اور اس کے ذریعے سے لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا اہم ہے کہ اللہ اس کی قرآن میں قسم کھا رہے ہیں اسی لیے ہر مسلمان کو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن پیارے بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جو شکشن ہے یہ جو تعلیم ہے اس کے لیے ادب چاہیے ادب کا مطلب ہے ڈسپلین آپ اپنے ٹیچر اپنے شکشک اپنے استاد کا ادب کرو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ جتنا آپ اپنے شکشک اور اپنے استاد کا ادب کریں گے ان کی خاص عزت کریں گے तो उससे आपकी तालीम में आपके शिक्षण के अंदर तरक्की होगी, प्रगति होगी। अल इल्म बिल अदब, कि शिक्षण का ताल्लुक अदब के साथ है। जितना अदब के साथ और डिसिप्लिन के साथ रहोगे, इतना तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे शिक्षण में खूब तरक्की होगी, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो स्टूडेंट्स अपने उस्ताद, अपने शिक्षक का अदब करते हैं, उनको अल्लाह ताला जरूर न जरूर तरक्की देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने उस्ताद और शिक्षक का रिस्पेक्ट और अदब करें। हमारे बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम शाफी को एक मरतबा जरूरत पड़ी कि ये कुत्ता कब बालिग होता है, ये मालूम करने की, क्योंकि बहुत बड़े इस्लामिक लॉ और मसले मसाइल के वो इमाम हैं। तो कब कुत्ता कब बालिग होता है ये कौन बतलाएगा? तो किसी ने कहा कि किसी हरिजन के पास जाओ, वो आपको बतलाएंगे कि कुत्ता कब बालिग होगा। तो एक हरिजन को जाकर के पूछा कि कुत्ता कब बालिग होता है, तो उसने बतलाया कि जब वो टांग ऊंची करके पेशाब करे तो समझो कि वो बालिग हो गए, और जब तक वो टांग चौड़ी करके पेशाब करता है वहां तक वो नाबालिग है, और टांग ऊंची करके पेशाब करता है वो बालिग हो गए। बस इतनी सी बात एक हरिजन से, एक सफाई का काम करने वाले से सीख ली, तो पूरी जिंदगी उसका रिस्पेक्ट और अदर दिमाग में शामिल नहीं किया कि इस आदमी ने मुझे एक बात सिखलाई है और एक चीज मुझे सिखला दी, अब पूरी जिंदगी जो है मैं उसका अदब करूंगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हुजूर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के जमाई दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने, चौथे खलीफा, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे हजरत उमर फारूक है, तीसरे हजरत उस्मान बनी है, और चौथे हजरत अली मुर्तजा है। हजरत अली फरमाते कि जिसने मुझको एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक जुमला सिखला दिया, मैं पूरी जिंदगी उसका गुलाम हूं, चाहे तो मुझे बेच देंगे, चाहे तो मुझे आजाद कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप अदब करोगे अपने उस्ताद का, अपने शिक्षक का, अपने टीचर का, इतना ज्यादा आपको फायदा होगा, इतनी ज्यादा आपको पढ़ाई में, तालीम में तरक्की होगी। दूसरी बात मैं आपको खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमको सच्चाई की बचपन से आदत डालनी चाहिए, सच्ची बात बोलना सीखो। एक मुसलमान के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। झूठ बोलने से मुंह के अंदर से एक खतरनाक बदबू निकलती है, ऐसी खतरनाक बदबू निकलती है कि अल्लाह के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं उस झूठ की बदबू की वजह से। तो ये झूठ बोलने के अंदर एक गंध है, बुरी बुरी उसके अंदर से खराब वास निकलती है, और इतनी खतरनाक बदबू और गंध और वास निकलती है कि फरिश्ते दूर चले जाते हैं। और आता है कि सच्चाई आपको नजात दिला देगी, आपको छुटकारा देगी तकलीफों से, और झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे दुनिया में भी और अल्लाह के यहां भी। तो ये झूठ बोलना बहुत खतरनाक गुनाह है, और बचपन के अंदर अगर झूठ बोलने की तुमको आदत पड़ गई तो पूरी जिंदगी झूठ बोलने की आदत रहेगी। और हमारा तो ईमान है मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर, कयामत के ऊपर, हिसाब किताब के ऊपर। कुरान में है कि जो आदमी दुनिया में झूठ बोलता है तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर भी झूठ बोलेगा, उसकी आदत जो बनेगी तो मरने के बाद अल्लाह के सामने भी झूठ बोलने की आदत रहेगी। खुद कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहि रब्बिना कुन्ना मुशरिकीन। कयामत के दिन अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह हमने ये गुनाह नहीं किया, झूठ बोलेंगे अल्लाह के सामने। इसीलिए झूठ बोलने की आदत से अपने आप को बचाओ। ये झूठ बोलने की आदत दुनिया में भी आपको बर्बाद करेगी, कयामत के दिन भी आपको बर्बाद करेगी और अल्लाह के सामने आपको जहन्नम की आग में जाने का जरिया बनेगी। अब कैसे कैसे हम लोग झूठ बोलते हैं, अपने प्रिंसिपल के सामने, अपने शिक्षकों के सामने, अपने उस्तादों के सामने हम झूठ बोलते हैं और छोटी छोटी बातों के अंदर। देखो आपको एक काम सौंपा जा रहा है कि आप अपने वाली को ये रिपोर्ट ले जाओ और उनके पास सिग्नेचर करा के लाओ। अब तुम खुद सिग्नेचर कर लो, दे दो कि मेरे अब्बा ने कर दिए, ये झूठ है और इस झूठ के ऊपर अल्लाह के यहां गुनाह होगा आपको। आप बनावटी चिट्ठी लिख करके ले आओ तो ये राइटिंग में लखान में झूठ है और इस झूठ के ऊपर अल्लाह ताला के यहां गुनाह होगा आपको। तो जिस तरह झूठ जुबान से होता है, बोलने से होता है, इस तरह राइटिंग में लखान के अंदर भी झूठ होता है, उसमें भी बनावट होती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में, लाइफ में सच्चाई लाओ। अगर सच्चाई होगी तो तुम कामयाब होंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। और मैं तो यूं कहता हूं कि झूठ के अंदर क्या होगा, बहुत बहुत तो थोड़ी सी सजा होगी आपको, थोड़ी सजा होगी। सच्चाई के अंदर यह है कि थोड़ी सजा, और झूठ बोलने गए तो अल्लाह के यहां बहुत बड़ी सजा होगी। या आपने सच बोल दिया कि ये काम उससे भूल से हो गया तो आपके शिक्षक आपको थोड़ी सी सजा देंगे और क्या करेंगे, और झूठ बोलने गए तो कब्र के अंदर की जहन्नम की आग है और अल्लाह के यहां भी जहन्नम की आग है, अजाब है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना, आदत बनाओ कि इंशाल्लाह हम सच बोलेंगे, कहो इंशाल्लाह और कहो इंशाल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा वादा करो। और देखो फिर झूठ से आप बचोगे, सच्चाई पर आओगे तो अल्लाह ताला आपको कैसे कैसे नवाजते हैं। आपने किस्सा सुना होगा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। वो आपकी तरह छोटे बच्चे थे और वो गए एक मदरसे में दीन सीखने के लिए। उनकी मां ने उनको भेजा, उनके अब्बा नहीं थे, वो यतीम थे, हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब उनको उनकी मां ने भेजा तो उनके कपड़े के अंदर पैसे सी करके दिए, कपड़े में छुपा दिए और सी करके दे दिए। अब रास्ते के अंदर गुंडे लोग आए, चोर लोग, और उन्होंने आकर सबके पैसे लूट लिए। अब ये छोटा सा बच्चा मदरसे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको उसकी मां ने छुपा करके सी करके पैसे दिए थे। तो चोर के सरदार ने पूछा, बेटा तेरे पास कुछ पैसे हैं? तो उन्होंने सच सच बोल दिया, हाँ मेरे पास भी पैसे हैं। तो कहा, कहाँ है तेरे पैसे? तो उन्होंने अपना कपड़ा निकाल के बताया कि देखो अंदर मेरी माँ ने सी के छुपा के दिए हैं। तो वो चोरों का, गुंडों का जो सरदार था, इनकी सच्चाई देखी कि ये छोटा सा बच्चा है लेकिन कैसा सच्चा बच्चा है, कि ये अगर हमको नहीं बतलाता तो हमको पता भी नहीं चलता कि इसके पैसे कहां हैं। लेकिन इस बच्चे ने सही सही बोल दिया कि मेरे पास पैसे हैं। तो तमाम के तमाम चोर लोगों ने पूरी जिंदगी चोरी करने से तौबा कर ली। अर्थात एक छोटा बच्चा सच बोलता है और बच्चे को पूछा बेटा तूने क्यों सच बता दिया, तो कहा अल्लाह ताला के डर से मैंने सच बता दिया कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो गुंडों का जो सरदार था उसके दिल में बहुत असर हुआ कि एक छोटा बच्चा अल्लाह से डरता है और हम बड़े होकर चोरी करते हैं। तो उन सब गुंडों ने तौबा कर ली और सब नेक बन गए, सब सुधर गए। इसे आप सच बोलोगे तो सच बोलने की आदत पूरी जिंदगी आपको फायदा देगी। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई की आदत बनाओ, ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर सच्चाई की आदत हो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए पाक साफ रहना बहुत जरूरी है कि हम पाक साफ रह ले। ये पेशाब ये नापाक चीज है। आपको मालूम है कि पेशाब के छींटे अगर आपके कपड़े पर उड़ेंगे, आपके बदन पर उड़ेंगे, तो आपका कपड़ा और आपका बदन नापाक हो जाएगा। और जो नापाक होता है ऐसे नापाक लोगों के पास अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो नापाक आदमी मस्जिद में नहीं जा सकता, ऐसे नापाक आदमी से अल्लाह खुश नहीं होते। अगर आप खड़े खड़े पेशाब करेंगे तो खड़े खड़े पेशाब करोगे तो पेशाब के छींटे उड़ेंगे तुम्हारे कपड़े के ऊपर, तुम्हारे बदन के ऊपर, और तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा बदन नापाक हो जाएगा। और उस पर मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, एक मरतबा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र के पास से गए, तो दो कब्र के अंदर जो मुर्दे सोए हुए थे उनको कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, उनको कब्र में फरिश्ते मार रहे थे, कब्र के अंदर आग लगी हुई थी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक कब्र का मुर्दा वो पेशाब के छींटे से बचता नहीं था, वो उसके कपड़े पर पेशाब के छींटे उड़ते थे, उसके बदन पर पेशाब के छींटे उड़ते थे और उससे अपने आप को बचाता नहीं था, इसलिए उसको कब्र के अंदर अल्लाह के फरिश्ते मार रहे और कब्र में उसकी आग लगी हुई। अब आप सोचो कितना बड़ा गुनाह है कि अगर पेशाब के छींटे से नहीं बचेंगे तो कब्र के अंदर फरिश्ते मारेंगे, कब्र के अंदर आग लगेगी। इसीलिए हमें अपने आप को पेशाब के छींटे से बचाना चाहिए। इसीलिए मैं अपने तमाम बच्चों से कहूंगा कि आप पेशाब करो तो बैठ करके करो ताकि छींटे ना हो, ये अच्छी आदत डालो। इसकी आदत डालेंगे तो नहीं डालेंगे कहो इंशाल्लाह हम पेशाब के छींटे से बचेंगे, ऐसा कहो और इंशाल्लाह बैठ करके पेशाब करेंगे। और पेशाब के बाद पानी से इस्तिंजा करेंगे, ये बहुत जरूरी है पाक साफ रहना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वच्छता अधो ईमान से, ये हदीस है। तहत्तुहुर शत्रुल ईमान, पाक साफ रहना ये हमारे ईमान का आधार हिस्सा है। और एक हदीस में आता है कि मुसलमान कभी नापाक नहीं हो सकता, इसीलिए पाक साफ रहकर के जिंदगी गुजारो, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं हमारी बहनों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, शिक्षण लेने वाली, देखो अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छा चांस दिया है कि इस स्कूल का मैनेजमेंट और यहाँ की कमेटी वो माशाल्लाह सब मुसलमान है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। एक मुसलमान होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस्लामी पर्दे का ख्याल करें। पर्दा हमारे लिए जरूरी, कुरान में अल्लाह का ऑर्डर है पर्दा करने का। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया का या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, का अपने मुंह के ऊपर, अपने बाल के ऊपर, अपने सर के ऊपर का ओढ़नी डालते रहो, बाल खुले मत रखो। ये बाल को खुला रखना बहुत बड़ा गुनाह है। जिन औरतों ने, जिन लड़कियों ने अपने बाल को खुला रखा तो जहन्नम की आग में फरिश्ते उनके बाल को खींचेंगे, उनको अजाब दिया जाएगा। इसलिए मैं अपनी तमाम बेटियों से कहूंगा कि आदत बना लो कि रोजाना अपने सर के ऊपर दुपट्टा, ओढ़नी, स्कार्फ डाल के आओ। आपके बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, आपके बाल ढके हुए होने चाहिए। और मैं आपको कहूं कि ये बाल ढकने के अंदर तुम्हारी इज्जत है। आज दुनिया के अंदर जितने क्राइम्स, गुनाह हो रहे उसकी वजह यह है कि बेपर्दे हैं। अगर ये पर्दा आएगा और तुम अपने बाल को छुपा के रखोगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे गुनाह के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, काबू हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा, अपना स्कार्फ कंपलसरी स्कूल के अंदर ओढ़ करके आओ। इसके अंदर अल्लाह ताला राजी होंगे, अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे और अल्लाह के आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। बल्कि यहाँ से घर जाने के बाद भी घर में भी ओढ़नी के साथ रहो, दुपट्टे के साथ रहो और अपनी माँ को भी समझाओ कि माँ देखो ओढ़नी और दुपट्टे के साथ रहने में अल्लाह राजी है। और ओढ़नी दुपट्टा नहीं होगा तो अल्लाह ताला नाराज होंगे और अल्लाह ताला की अजाब होगा और हमको तो अल्लाह का राजी करना है। इसीलिए इसका भी आप लोग खास तौर पर ख्याल रखो। और देखिए ये आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आपके पढ़ने का जमाना है, एजुकेशन शिक्षण लेने का जमाना है। खूब मेहनत करो, मेहनत करने से आप लोग आगे बढ़ोगे। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप लोगों के लिए एग्जाम, परीक्षा सब चीज आसान हो जाए। अगर इस जमाने में जो शिक्षा लेने का जमाना है आप मेहनत करोगे तो फिर कोर्स पूरा करने के बाद आपको जिंदगी पर मजा ही मजा है। ये जमाना, ये टाइम है आपके लिए मेहनत करने का। ये इल्म मेहनत करने से आता है, एजुकेशन मेहनत करने से आता है। आप यहां से घर जाने के बाद होमवर्क करो और जो काम आपको सौंपा जाए वो भी करके लाओ। लिखने का, वांछन का, वो पूरा काम करके लाओ। इसके अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए बल्कि वो काम पूरा करके आना चाहिए। इतनी मेहनत करो कि आप लोगों का नाम बोर्ड में और जो है पेपर में, न्यूज़पेपर में आपके नाम रोशन हो रहे कि देखो मदरसा स्कूल के इतने स्टूडेंट इतने परसेंट लाए, इतने टका लाए। ये कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। रात को देर देर तक जो है अपनी बुक्स, अपनी चौकड़ी वाचो, लिखने का काम करो। जाने के बाद खेलना कूदना छोड़ दीजिए। भाई स्कूल के अंदर ही एक तो खेल कूद का पीरियड होता है, अब घर जाने के बाद आप जो है फारिग होकर खाने पीने से जब फ्री हो जाओ तो फ्री होकर के फौरन अपना होमवर्क करने में लग जाओ। ये टेलीविजन देखना, ये फिल्म देखना, ये एक तरफ गुनाह का काम है और साथ में आपके टाइम को बर्बाद करने वाली चीज है। इसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जितना टाइम आप फिल्म देखने में, टेलीविजन पर लगाओ, इतना आप अपनी स्टडी में लगाओ, बुक पढ़ने में लगाओ, वांछन में लगाओ, तो आपको प्रगति होगी, तरक्की होगी। और जितना मेहनत से पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे इतना आपको फायदा होगा। जितने भी हमारे बड़े बड़े आलिम गुजरे जो इस्लाम के, दीन के बड़े एक्सपर्ट थे, उनका क्या हाल था? आधी आधी रात पढ़ते थे, रोजाना आधी रात तक, एक बजे तक, दो बजे तक पढ़ते थे। जब पढ़ते थे तब जाकर के उनको इल्म का ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। और अरबी के अंदर कहते हैं मन तरबल ओला सहिरल लयाली, जिसको फर्स्ट नंबर चाहिए उसको रात को जागना पड़ता है। रात को जागे लेकर कभी फर्स्ट नंबर आ नहीं सकता है। बेकदरी कद्दी तुक्त सबुल महान, ये जितनी मेहनत करोगे इतना ऊंचा दर्जा तुमको मिलेगा। इसीलिए खुद में आप अपने शिक्षकों को पूछो, अपने टीचर को पूछो ये टीचर और शिक्षक कैसे बने, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने एजुकेशन के जमाने के अंदर, तालीम लेने के जमाने में ये मेहनत करके आज इस ग्रेड के ऊपर पहुंचे। लिहाजा तुम भी मेहनत करो और मेहनत करके अपनी स्कूल का नाम रोशन करो, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो और घर जाके अपना टाइम बर्बाद मत करो। इसीलिए हमको आज प्रॉमिस करो कि इंशाल्लाह आज से खूब पढ़ेंगे, कहो इंशाल्लाह। और जो है टीवी में, फिल्म में, खेल में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अपना वक्त जाए और बर्बाद नहीं करेंगे। और देखो जितना आप लोग टाइम की पाबंदी करेंगे, टाइम की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। जितना टाइम स्कूल का है आप टाइम से 5 मिनट पहले आ जाओ, ये डेढ़ बजने के बाद फिर हम देर देर से आवे ये अच्छी आदत नहीं है, बल्कि टाइम पर आ जाना चाहिए, बल्कि बिफोर टाइम आना चाहिए। जल्दी आकर के स्कूल में बैठ जाओ और बैठ करके कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, और यहाँ आकर के और बहुत सारी चीजें होती है देखने की, पढ़ने की, वो याद करो। टाइम की पाबंदी करना बहुत जरूरी है, जितना टाइम की पाबंदी करेंगे इतना आपको फायदा होगा और उसमें आपको बहुत तरक्की नसीब होगी। इसलिए मैं आप सब बच्चों से कहूंगा कि खूब टाइम की पाबंदी करो और जो है स्कूल के अंदर लेट मत आओ, देर से मत आओ, और जो मतलब स्कूल का जो कानून है उस कानून को भी आपको फॉलो करना चाहिए। ये कानून और जो लॉ बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं, ये किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाते, तकलीफ देने के लिए नहीं बनाते। कायदे कानून का मतलब ये होता है ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ हासिल हो, इसके लिए कायदा और कानून बनाया जाता है। देखो आदम अलैहि सलाम जन्नत के अंदर थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कायदा बना दिया, आपको पूरी जन्नत में परमिशन है, जहाँ जाना और जाओ, लेकिन एक कायदा यह है कि इस झाड़ को टच भी नहीं करने का, इस झाड़ के करीब भी मत जाना, ये अल्लाह ने कायदा बना दिया, कानून बना दिया। और कानून का भंग होता है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर जो है अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तो एक दिन आदम अलैहि सलाम भूलने चले गए तो फिर दुनिया में आना पड़ा और ये सारी दुनिया बस गई, वरना वो भूली होती तो जन्नत में ही रहते और हम सब भी जन्नत में ही होते और वही मदरसा स्कूल होती। तो ये तो जो है आदम अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से भूल करवा दी, अल्लाह को ये दुनिया बसानी मकसूद थी इसीलिए। तो मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जन्नत जैसी जन्नत में भी कायदे का पालन करना पड़ता है और कायदा कानून का पालन इसलिए करना है ताकि हमको कुछ सीखने को मिले। इसीलिए आप शिस्त से रहो, अदब से रहो, टाइम की पाबंदी करो और स्कूल में जो कायदे कानून हो उसकी पाबंदी करो, ये सब चीजें आपको फायदा दिलाएगी। इससे आपका नाम रोशन होगा, आपको इज्जत मिलेगी, जितना आप मेहनत करोगे इतना आपका नाम दुनिया के अंदर चमकेगा। मैं आपको सही बात बतलाता हूँ, बहुत सही बात, कि इस दुनिया में आपको इज्जत चाहिए, इस दुनिया में आपको माल चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो आपको एजुकेशन शिक्षण बहुत मेहनत से लेना पड़ेगा। जितना मेहनत से करेंगे इतना इंशाल्लाह आप लोगों का फायदा होगा। तो मेहनत से पढ़ोगे ना आप लोग, कहो इंशाल्लाह, और खूब जो है स्कूल के कायदे कानून की पाबंदी करेंगे, और ये वायदा करो कि इंशाल्लाह कल से लेट नहीं आएंगे, कौन टाइम पर आएगा, कल से टाइम पर कौन पाबंदी से आएगा। जितने हमारे स्टूडेंट पूरे साल पूरा भारत स्कूल के अंदर 5 मिनट टाइम से पहले आएंगे, 1 दिन भी लेट नहीं आएंगे और पूरे साल के अंदर कभी घेराबंदी नहीं करेंगे। तो मैं हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ के पास उनकी रिपोर्ट मंगवाऊंगा और उनको मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह किताब का इनाम दूंगा। मैं बेहतरीन किताब का अपनी तरफ से आपको इनाम दूंगा। जो स्टूडेंट रोजाना जो है पाबंदी से आएंगे और स्कूल के अंदर जल्दी आएंगे और जिनकी 1 दिन की घेराबंदी नहीं होगी और इनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम इंशाल्लाह आपको इनाम देंगे। और देखो ये जो हमारी स्कूल है, ये हमारी हाई स्कूल की बिल्डिंग है, ये बहुत मेहनत से बनी। कितने अल्लाह के बंदों ने इसमें चंदा दिया और कितने लोगों ने अपने पैसे उसमें लगाए और कितनी मेहनत करने के बाद ये बिल्डिंग बनी है। इसमें एक एक पैसा कौम के पसीने का लगा है, कौम की मेहनत का लगा है और अल्लाह की कितने बंदों ने बेचारों ने चंदे के लिए मेहनत की, लोगों ने अपने पसीने की कमाई का पैसा दिया। जब इतनी मेहनत से पैसा दिया तो इस बिल्डिंग की और आपके क्लास की और स्कूल की एक एक चीज को संभालना ये हमारा दीनी फर्ज बनता है। ये दीनी एतबार से जरूरी है कि हम बारी दरवाजे कांच किसी चीज को नुकसान नहीं करे। भाई घर के अंदर आप दरवाजा जोर से खोलोगे ना तो आपकी अम्मी भी डांटेंगे, बेटा धीरे दरवाजा खोल, दरवाजे को जोर जोर में मत पटको वरना टूट जाएगा। तो कैसे हम काम से जाएंगे? घर में एक कांच बच्चा बोल देता है तो माँ प्यारे बेटे को बेलन से मारती है, कांच फोड़ दिया। तो ये तो पब्लिक का है, चंदे की रकम से बना है, लिहाजा इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए स्कूल की एक एक चीज को संभालो, दरवाजे खिड़कियां बारी बांटना एक एक चीज को संभालो, इसको अपने घर की चीज समझो। जैसा अपने घर की चीजों को हम संभालते इस तरह इसको भी संभालो तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फायदा ही फायदे का जरिया बनेगा। और बिना वजह तोड़ फोड़ करना, नुकसान करना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे तोड़ फोड़ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो हमारी सुनी हुई नसीहत के ऊपर आप लोग इंशाल्लाह अमल करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। ये सब बातों के ऊपर पाबंदी से अमल करोगे ना, देखो अल्लाह को वादा करते हो कि पाबंदी से अमल करेंगे, इन सब बातों को इसको याद रख लो और उसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल करो। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओ, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती, बहुत दायर बच्चे बन जाओ। यानी पूरे बारोली में बात होनी चाहिए कि मदरसा हाई स्कूल के बच्चे वो डिसिप्लिन के अंदर नंबर 1 है, ऐसी बात होनी चाहिए। और ये बात कब होगी? जब आप लोग डिसिप्लिन के ऊपर आ जाओगे, उसमें आपका नाम रोशन होगा, आपकी स्कूल का नाम रोशन होगा और सब के सब लोग जो है आप लोगों से खुश हो जाएंगे। इसीलिए इसकी कोशिश करो कि अल्लाह ताला दुनिया आखिरत के अंदर आपको इज्जत दे। और मैं आपको फिर कहूंगा खूब मेहनत से पढ़ो, खूब मेहनत करो और घर जाकर के अपने टाइम को बर्बाद मत करो। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म अता फरमाए और सही तरीके से मेहनत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम अपनी स्कूल का नाम रोशन करने वाले बने। और अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इज्जत का जरिया बना दे। देखो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं आप लोगों को बहुत से एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप लोगों के पेपर दूसरी जगह जाते हैं और ये बोर्ड के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप खास करके बोर्ड के एग्जाम देने वाले हमारे बच्चे पढ़ने के अंदर खूब मेहनत करें और ऐसी मेहनत करें कि बोर्ड में हमारी स्कूल का 100% रिजल्ट आना चाहिए। कहो इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आएंगे। एक बच्चा भी हमारा फेल और नाकाम नहीं होना चाहिए। और देखो उसके लिए दुआ भी करो, उसके लिए दुआ भी करो। मैं आपको एक काम की चीज बता देता हूँ, देखो फजर की नमाज तुम पढ़ो और मगरिब की नमाज पढ़ो, तो फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा एक वजीफा पढ़ो, तो आपके लिए 7 पेपर इजी हो जाएंगे और आपका 1st नंबर आएगा। बताओ वो वजीफा आपको, रब्बी जितनी इल्मा, पढ़ो रब्बी जितनी इल्मा, कितनी मरतबा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, रब्बी जितनी इल्मा 7 मरतबा, फजर के बाद और मगरिब के बाद चालू कर दो, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सबका जो है 1st नंबर आएगा और सब आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वजीफा पढ़ो और मेहनत नहीं करें, मेहनत भी करने की वजीफा भी पढ़ने, और जब जिस दिन आप वर्ड का पेपर लिखने बैठो तो पेपर लिखने से पहले या अलीमु या अलीमु 21 मरतबा पढ़ने का दुरूद शरीफ के साथ, या अलीमु 21 मरतबा पढ़ के वर्ड का पेपर लिखना चालू करो, तो इंशाल्लाह आपका पेपर एकदम इजी हो जाएगा, फुल जैसा हो जाएगा। क्या बोलोगे, या अलीमु कितनी मरतबा पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका इजी हो जाएगा। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको मेहनत करने वाला बना दे, अच्छा स्टूडेंट बना दे। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं देखो स्कूल के अंदर माशाल्लाह नमाज के लिए इंतजाम है, तो स्कूल टाइम के अंदर आपको जोहर की नमाज लगती है, तो जोहर की नमाज आपको स्कूल के अंदर पढ़नी चाहिए, स्कूल के अंदर आपको जोहर की नमाज पढ़नी चाहिए। आपको तो मालूम है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुल्कों मुल्कों में जाता हूँ, मैंने अमेरिका और यूरोप के अंदर देखा कि हमारे मुसलमान स्टूडेंट अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर यूनिवर्सिटी में वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो आपको जो है वो क्रिश्चियन लोगों की स्कूल होती है, क्रिश्चियन मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, उसमें हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियां एक तरफ खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ तो आपको माशाल्लाह कुदरत की जगह मिली है, अल्लाह ताला ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, बहुत अच्छी चीज है। तो स्कूल के अंदर आपकी जोहर की नमाज अदा होनी चाहिए, कहो इंशाल्लाह कल से हम स्कूल में जोहर की नमाज पढ़ेंगे, कोई पाबंदी के साथ किसी दिन छुट्टी नहीं करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। ये सब बातों को याद रखकर इसके ऊपर अमल करो। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।